ओम शांति। प्राचीन मिस्र में एक दार्शनिक कभी जा रहा था और उसने देखा कि सामने से बहुत लंबी लंबी दो स्त्री आ रही है और उसे ये नहीं पता रहता ये दो स्त्रियां कौन है। और वो दार्शनिक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और देखता है अब क्या होगा। उतने में वहां एक राजकुमार आता है और जिसका कान कटा हुआ है और खून बह रहा है। उसके साथ में एक दूसरा राजकुमार है जिसके हाथ में तलवार है और वो चिल्लाता है जिसका कान कटा हुआ है वो राजकुमार, न्याय न्याय न्याय, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। तो वो जो महिलाएं थी दो, वो न्याय की देवियां थी, वो दोनों देवियां खड़ी हो जाती है और उनके सामने ये दो राजकुमार, दोनों भाई। तो वो पहला राजकुमार कहता है मुझे न्याय चाहिए, इसने मेरा कान काट दिया। और वो पूछता है उन महिलाओं से आप कौन हो, वो कहती है हम गॉडेस ऑफ जस्टिस है। वो कहता है दो दो, तुम दोनों में अंतर क्या है। वो कहती है कि तुम्हें किससे न्याय सुनना है। वो कहता है मैं एक एक से सुनूंगा। पहली जो देवी है वो कहती है ये तुम्हारा भाई है और उसने तुम्हारा कान काटा, मैं पहले उससे पूछूंगी क्यों तुमने ये किया और फिर उससे कहोगी कि तुम माफी मांगो और फिर उससे कहूंगी कि अब इसका कान तुम बन जाओ और उससे कहूंगी अब इसके लिए एक हेलमेट और इसका जो कान बह रहा है उसका इलाज करो, मैं ऐसा न्याय करूंगी। दूसरी जो देवी होती है वो कहती है ये जो तुम्हारा भाई है अपराधी है, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, इसे दंड दूंगी, 1 साल तो कारागार में, 100 कोड़े और 1000 अशर्फिया इसे देनी पड़ेगी और इतना ही नहीं ये लो तुम तलवार और तुम भी उसके साथ वही करो जो तुम उसने तुम्हारे साथ किया है। वो दार्शनिक छुपके से देख रहा है ये दृश्य दूर से। तो वो राजकुमार सोचता है मैं तो अपने भाई से प्यार करता हूं, परंतु जैसे हाथ लगाता है कान की तरफ और वो खून हाथ में आता है तो क्रोध से भर जाता है और वो दूसरी देवी से कहता है कि मैं तुम्हारा न्याय सुनूंगा, परंतु क्योंकि मुझे अपने भाई से प्यार भी है तो मैं उसे ज्यादा नहीं मारूंगा, थोड़ी सी चोट करूंगा उसके कान में। और वो दोनों भाई चले जाते हैं और जैसे वो जाते हैं वो दो महिलाएं, वो दो देवियां खड़ी है और वो दार्शनिक अवाक हो जाता है ये देखकर कि जो दो नंबर की देवी थी अचानक उसने अपना रूप बदल दिया, वो वास्तव में न्याय की देवी थी ही नहीं, वो युद्ध की देवी थी। ये कहानी प्राचीन मिस्र की है, उनके अपने देवी देवताओं के नाम है, जैसे हमारे इधर गणेश और ये सारे हैं। वो एरियस थी गॉडेस ऑफ वॉर और वो हंसने लगती है, देखा फिर से मैंने धोखा दे दिया ना, अब ये दोनों हमेशा लड़ते रहेंगे क्योंकि मैंने इनके हृदय में बदले का बीज डाल दिया है, घृणा उत्पन्न कर दी है। और वो वहां से चली जाती है, वो दार्शनिक अकेला रह जाता है पहली देवी के सामने और वो पहली देवी कहती है तुम यदि होते तो क्या करते, क्या मैंने जो किया सही किया था, जो जस्टिस मैंने दिया क्या वो ठीक था। और उन दोनों की काफी वार्तालाप होती है और वो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि विश्व में शांति लानी है तो बदला नहीं क्षमा, यदि विश्व में शांति लानी है तो प्रेम। इस तरह से फिर आगे उनका वार्तालाप दिखाया है। संडे की अव्यक्त वाणी चार भागों में इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, तीन भाग हो गए, चौथा बाकी था जो आज लेंगे। बेंगलोर के चीफ जस्टिस से मुलाकात, क्या कहा था बाबा ने? बहुत दिन हो गए, चार दिन हो गए ना, क्या कहा था? दो मुख्य बातें कही थी, सबसे पहली तो अनुभव, सबसे पहली बात कही थी अनुभव। बहुत ही सुंदर महावाक्य थे बाबा के, जब तक आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं तब तक परमात्मा प्रेम और परमात्मा प्राप्ति का भी अनुभव नहीं हो सकता। किससे बात कर रहे हैं बाबा? चीफ जस्टिस से बात कर रहे हैं। 84 में शायद पहली बार वो बाबा से मिलने मिल रहा है, उस आत्मा से बात कर रहे हैं। और जब बाबा किसी एक आत्मा से या किसी एक ग्रुप से बात करते हैं तो केवल उस व्यक्ति से या उस ग्रुप से बात नहीं करते, या केवल उस समय के लिए बात नहीं करते, उसके शब्द सारी मानवता के लिए है और उसके शब्द अनादि काल के लिए, हर समय के लिए है। वो तब भी प्रासंगिक थे तो अब भी प्रासंगिक है। बाबा ने कहा अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और जब तक आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं तब तक प्रभु प्रेम का, प्रभु प्राप्तियों का अनुभव नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ एक ही है, मैं आत्मा हूं। भाई भाई, भाई बहन की दृष्टि में भी, वृत्ति में भी दृष्टि चलायमान हो सकती है। आज की मुरली, तुम्हें इससे भी ऊपर उठ जाना है। कड़े शब्द है पूरी मुरली आज की सुबह की, साकार संपूर्ण प्यूरिटी पर। सबसे बड़ा अभ्यास यही है, इस देह से और इस देह भान से ऊपर उठ जाना। निरंतर आंतरिक अभ्यास ये चलता रहे, चिंतन चलता रहे, और ये इतनी सूक्ष्म साधना है कि ऊपर से कुछ पता नहीं चलता, आंतरिक साधना है। तो निरंतर इस साधना में लगे रहना, और सबसे कठिन साधना है वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि देहभान जन्म जन्म का है और जाता नहीं, मिटता नहीं, बहुत कड़ा है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं, जिसे बहन समझते हो, जिसे भाई समझते हो, उसमें भी विकार की दृष्टि आ जाती है, इतना कड़ा है ये। क्योंकि वासना किसी संबंध को नहीं मानती, उसे अपने पूर्ति का ख्याल है, फिर वो कोई भी हो। इसलिए संसार में इतने दुष्कर्म, इतने पाप है। क्या उन्हें पता नहीं? पता है, पर विवश हो जाते हैं, इतना जबरदस्त फोर्स उसमें। इसलिए किस बात का अनुभव हो? आत्म अभिमानी स्थिति का। वो सारी बातों के बारे में सोचना है जो हमें देहभान में लाती है, वो सारी बातों के बारे में सोचना है जो हमारी बुद्धि को हलचल में लाती है, चलायमान कर देती है। वो बदले का भाव हो सकता है सूक्ष्म, वो ईर्ष्या हो सकती है, कोई अभी अभी आया और हमसे आगे जा रहा है, वो असुरक्षा हो सकती है, वो भय हो सकता है, वो भविष्य की चिंता हो सकती है, यहां तो आगे, पर आगे क्या? यदि हम बीमार पड़ जाएं तो हमारी कौन देखभाल करे? कितने सारे प्रश्न है मन में, ढेर सारी बातें हैं। ये सारे सूक्ष्म मन के संकल्प बाहर देहभान को जन्म देती है। इसलिए मैं आत्मा हूं, एकांत में बैठकर चिंतन करना है। मैं वो हूं जिसे अग्नि जला नहीं सकती, मैं वो हूं जिसे वायु उड़ा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, पानी जला नहीं, गीला नहीं कर सकता, कोई शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता, मैं अविनाशी आत्मा हूं। बाबा जब थे तो दादियों को एक एक घंटे केवल एक ही समान छोटा सा, तब इतने सोमान भी नहीं थे, केवल एक ही छोटा सा संकल्प, एक घंटा केवल इस पर चिंतन करो, मैं अविनाशी आत्मा, बस। तो प्रभु प्रेम परमात्मा प्राप्ति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक इस एक बात का अभ्यास नहीं। इसके लिए शांतिवन में जो मुरली चली थी, क्या कहा था बाबा ने उसमें, सोमान में स्थित रहो, स्तोमान में सेट रहो, इस सीट से अपसेट नहीं होना, नीचे नहीं आना, शान से नीचे नहीं उतरना। तो सोमान का अभ्यास जिसे है, वही समय के महत्व को भी जान सकता है। और सोमान का अभ्यास केवल रटन नहीं है, केवल लिखना नहीं है, सोमान चिंतन का विषय है। एक कोई भी सोमान और उसका गहराई से चिंतन, जैसे आज का वरदान था, मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। किस चीज के लिए जिम्मेवार? ब्राह्मण आत्मा बनने के बाद कौन सी जिम्मेवारी है, सोचना इसके बारे में। सात प्रकार की जिम्मेवारी बन जाती है जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं। आपको खाली नाम गिना रहे, चिंतन आप लोग करना। सबसे पहली जिम्मेवारी स्वयं के प्रति, दूसरी जिम्मेवारी भगवान के प्रति, तीसरी जिम्मेवारी संसार की आत्माओं के प्रति, चौथी जिम्मेवारी इस ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के प्रति, पांचवी जिम्मेवारी इस यज्ञ के प्रति, छठवी जिम्मेवारी प्रकृति के प्रति, और सातवीं जिम्मेवारी एडवांस पार्टी की आत्माओं के प्रति। क्या क्या है उसका गहराई से स्वयं चिंतन करना। कोई भी एक बात मुरली से लेना, देखना और सोचना और चिंतन करना। जब तक ये काम नहीं किया जाएगा, तब तक कितनी भी क्लासेस सुन लो, वो सब बाहर का चिंतन है, उधार का चिंतन है। और कभी कभी वो हमारे चिंतन को रोक देता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए स्वयं मुरली पढ़ना, स्वयं उसमें से कुछ विषय निकालना और उनका दिन भर गहराई से चिंतन करना। तो सबसे पहली बात थी अनुभव, ज्ञान का अनुभव, एक एक पॉइंट का अनुभव, योग का अनुभव, धारणाओं के जो गुण है, उन एक एक गुण का अनुभव। अनुभव जब तक नहीं, तब तक धर्म पूरा हो ही नहीं सकता। यह सबसे पहली बात थी। और मुख्य जो मुरली थी वो थी स्पिरिचुअल क्या बनो, जज बनो, जिसकी हमने शुरुआत की थी। जज बनो अर्थात क्या करो, जज के क्या कर्तव्य होते हैं, न्याय करता है। और जज क्या करता है, निष्पक्ष न्याय करता है। और जज क्या करता है, बाबा जज से मिल रहे हैं, जिस जो जैसा सामने है उसी को, उसको उसी प्रकार की शिक्षा बाबा देते हैं। ये एक श्रेष्ठ टीचर की निशानियां हैं। सामने कौन मिलने आ रहा है, उन्हें क्या चाहिए, वही उसे दिया जाता है। उस मुरली में बाबा ने उनको कहा, ये बाप की आज्ञा है, स्पिरिचुअल जज बनो, डबल जज बनो। वो जज तो एक जन्म के लिए छुड़ाते हैं, तुम जन्म जन्म के लिए दुखों से जजमेंट छुड़ाने का जजमेंट दो। आत्माओं को क्या करो, दुखों से छुड़ाने का जजमेंट दो। क्योंकि जज का एक रॉन्ग डिसीजन, एक गलत निर्णय किसी निर्दोष को, लॉ में कहा जाता है अपराधी छूट जाए तो चलेगा, पर निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और हम भी द्वापर से या सत्युग से ही हमारा काम जजमेंट का होगा। राजा महाराजे जब द्वापर में होंगे, जज करना पड़ेगा। रोज हमारे सामने कितने लोग आएंगे, कितनी केसेस आएगी और कितनी हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। राजा का एक गलत निर्णय बहुत बड़ा पाप हो जाता है, प्रजा का एक गलत निर्णय इतना बड़ा पाप नहीं है, परंतु राजा का गलत निर्णय बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, स्पिरिचुअल जज बनो, डबल जज बनो, और ऐसा जजमेंट दो कि दूसरी आत्माएं जन्म जन्म के लिए छूट जाए दुखों से, पीड़ा से, दर्द से। ऐसे जजमेंट के लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। तो एक जज में क्या क्या गुण होने चाहिए उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाबा ये केवल जज के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कह दी, उस जज बनने के लिए तो उधर की पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पिरिचुअल जज बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? बस दो ही है, आत्मा और परमात्मा। इतना पढ़ लिया मतलब जज बन गए, ज्ञान का इंजेक्शन लगाना चालू कर दो मतलब डॉक्टर बन गए, नवनिर्माण का कार्य करने लगो मतलब इंजीनियर बन गए, आर्किटेक्ट बन गए। किसी आत्मा का जीवन सुधार दो, उसको चैतन्य मूर्ति बना दो अर्थात मूर्तिकार बन गए। जितने प्रोफेशन है संसार में वो सब हम है, और उतना सब बाबा भी है। वो लॉ मेकर है तो हम भी लॉ मेकर है, जैसे बाप वैसे बच्चा। छोटी सी मुलाकात है, 5 मिनट बाबा मिले होंगे, पर वो तब मिले थे 84 में, और आज की तारीख में आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कितनी गहराई है एक एक वाक्य में। डबल जज बनो, स्पिरिचुअल जज बनो, बाप की आज्ञा है जज बनो, जैसे वो जज करते वैसे तुम ये करो। तो एक जज की, जज के ऐसे 10 गुण है। सबसे पहला गुण है जज का जुडिशियल टेम्परामेंट, अर्थात उसका जो स्वभाव होता है वो परख सकता है व्यक्ति को, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जजमेंट देता है। यदि हमारे पास कोई आ जाए, दो आत्माएं, और हमें जजमेंट देना हो, हम गलत जजमेंट ना दे। जैसे दादी प्रकाशमणि के पास दो व्यक्ति आ गए, जब भी आ जाते थे दो भाई दो बहनें, दादी पहले एक की बात पूरी सुनती थी फिर उसको भेज देती थी, फिर दूसरों की बात पूरी सुनती थी और फिर बाद में निर्णय देती थी, जिससे दोनों का कल्याण हो। और वास्तविक जजमेंट वही होगा जिसमें अगर जज के खुद के ही मन में बदले की भावना हो तो जजमेंट दे पाएगा। हमारे सामने दो प्रतिवादी आ गए, हम दो वादी आ गए, और हमने एक की तरफ पहले से हम झुके हुए हैं, पहले से एक हमारा दोस्त है, ये थोड़े ऊंचे कार्य है। दो प्रकार हमको करने पड़ेंगे, एक तो कुछ लोग हमारे पास आएंगे जजमेंट लेने के लिए, और कभी कभी हमको दूसरों के पास जाना पड़ेगा, बड़ों के पास जाना पड़ेगा। दोनों काम है, और दोनों काम कभी ना कभी, कभी ना कभी करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास जजमेंट के रूप में लोग आएंगे, कोई राय पूछने आएगा कि ये करूं क्या, मधुबन आऊं कि उधर ही रहूं, जॉब करूं कि छोड़ दूं। छोटी छोटी बातों के लिए आ सकते, जैसे एक कोर्ट में एक जज होता है, वहां एक स्कूल की टीचर आ जाती है कटघरे में, जिसने ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया, तो वो कहता है तुमने ट्रैफिक का रूल तोड़ा, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बचपन में मेरी टीचर ने मुझे बहुत सताया था, अब लिखो 500 बार कि मैं ट्रैफिक का रूल नहीं तोड़ूंगी। उस टीचर को कहता है, क्योंकि टीचर ने मुझे ऐसा ही कराया था बचपन में। तो जज जो होगा उसका जो स्वभाव होगा जुडिशियल, अर्थात न्यायकारी, न्याय संगत, ऐसा उसका स्वभाव होगा। टेम्परामेंट अर्थात स्वभाव, निष्पक्ष, और उस निष्पक्ष अवस्था के लिए आत्मा को कितना साक्षी रहना पड़ेगा। और कभी कभी सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपना ही जजमेंट करना पड़ेगा, यह सबसे सूक्ष्म बात है। पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति स्वयं ही। कल की वाणी थी ना, कल की वाणी थी, बड़ा पावरफुल वाक्य था, अपने पास्ट के हार और जीत को याद करो, था ना ये हिस्ट्री, हार और जीत को याद करो, अपने ही जीवन में जो हार और जीत हुई उसी को याद करो कि मेरी हार क्यों हुई थी। रोज अमृत वेला ठीक हो रहा है, एक दिन अचानक अमृत वेला ठीक नहीं हुआ या लेट उठे, चलो बाद में कवर कर लिया, पर अब चिंतन का विषय क्यों। रात में जरूर कुछ गड़बड़ की होगी जिसका दंड अमृत वेला मिला, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं सब वापस आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हमने कुछ किया और हमको नहीं मिला। जैसे एक व्यक्ति जाता है उसको कुत्ता काट लेता है, जैसे अपनी कार खोलता है नीचे कुत्ता बैठा रहता है, वो काट लेता है, वो इतना गुस्सा हो जाता है उस कुत्ते पर। ऑफिस में जाता है, वो बॉस होता है, मीटिंग लेता है, जितने लोग होते हैं ऑफिस में सबको डांटता है, वो जितने लोग होते हैं उनके नीचे जो लोग होते हैं वो उनको डांटते हैं, और सब डांटते डांटते प्यून जो होता है वहां का सब लोग उसको सबसे ज्यादा डांटते हैं। वो किसको डांटेगा, उसके नीचे कोई है ही नहीं। वो घर आता है, उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है लेट क्यों है, उसको डांटता है बहुत सारा। अब पत्नी अपने पति को कैसे डांटे, वो देखती है उसका बेटा टीवी देख रहा है, उसको कहता है टीवी बंद कर पहले, और उसको डांटती है। बेटा इतना गुस्से में आ जाता है, बाहर जाता है और वही कुत्ता होता है उसको उठा के पत्थर फेंक के मारता है, जहां से चालू हुआ था वहीं आ गया। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हम ये कह ही नहीं सकते इसने किया, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। हमारे पास वही आ रहा है जो हमने किया था। तो सबसे पहला गुण जो होना चाहिए एक जज में, हम सब जज है। अब ये भूल जाओ हमारे क्या प्रोफेशन है, हमारा क्या बैकग्राउंड है, आज क्या समझना है, मैं जज हूं, स्पिरिचुअल जज हूं, डबल जज हूं, और आत्माओं को ऐसा जजमेंट देने वाला हूं कि जिनके दुख छूट जाए। तो मैं जज हूं, पहला गुण बताया अध्यात्म जुडिशियल टेम्परामेंट, उसका न्यायकारी स्वभाव होता है। दूसरा है इथिक्स, इथिक्स अर्थात वो नियमों का पालन करता है। जैसे मेडिकल प्रोफेशंस में इथिक्स होते हैं, हर प्रोफेशन में इथिक्स है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मेडिसिन में दो डिपार्टमेंट है, एक सर्जरी डिपार्टमेंट एक मेडिसिन डिपार्टमेंट, वो इधर इंटरफियर नहीं कर सकता है, वो इधर इंटरफियर नहीं कर सकता जब तक उसको बोला ना जाए, चाहे वो तुम्हारा कोई भी हो। ये रूल्स है, ये इथिक्स है, ये न्याय है, ऐसी मर्यादा है। जैसी यज्ञ की मर्यादा है वैसे संसार में जितने डिपार्टमेंट है उन हर डिपार्टमेंट के अपने अपने रूल्स है। जाओ आर्मी के कैंपस में जा सकते हो क्या, नहीं घुस सकते डायरेक्ट, कार्ड चाहिए उसके सिवा नहीं जा सकते, उनके अपने नियम है, हर चीज के नियम है, हर चीज नियमबद्ध है संसार में। इससे सूक्ष्म में एक बात सीखने की है, हमें अपने जीवन को नियमों में बांध देना है ताकि हर एक को पता चले ये समय में वो व्यक्ति इस तरह ये कर रहा होगा। इतना फिक्स नियम अपने कर दे, जैसे कुछ कुछ लोगों का दिखाया है, इमैनुअल कैंट था जर्मन फिलोसोफर, लोग अपनी घड़ी सेट करते थे, वो आ रहा है मतलब 8 बज गए, हमारी घड़ी लेट है मतलब वो ब्राइट है, इतना हो पंक्चुअल, और हर चीज में ऐसा था। तो कोई भी चीज हो नियम से बांध देना है अपने आप को, छोटे छोटे नियमों से बहुत काम के है ये नियम। तो दूसरी बात है इथिक्स, अंग्रेजी शब्द है इथिक्स। उसके बाद है साहस, लीगल मॉरल करेज कहा जाता है, क्योंकि एक जज पर बड़ा प्रेशर होता है कई बार, इधर की पार्टी से उधर की पार्टी से, चाहे दूसरे कोई भी कितना भी प्रेशराइज करने की कोशिश करे वो वही न्याय देगा जो उसको देना है। जैसे महाभारत में दिखाया है विदुर बड़े कटु शब्द बोलता है हमेशा, धृतराष्ट्र कहता है क्या तुम्हारे पास दूसरे शब्द ही नहीं है मेरे लिए, हे कटु शब्दों के भक्त, ऐसे बोलता है उसको, तुम जो भी बोलते हो मेरे खिलाफ ही बोलते हो। वो कहता है मैं आपके खिलाफ नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वह सत्य बोल रहा हूं और न्याय बोल रहा हूं, न्यायकारी बोल रहा हूं, वो आपको लगते हैं आपके मोह के कारण। तो करेज, साहस, हमारे पास भी साहस हो, जब यदि हमें निर्णय कुछ करना हो तो साहस चाहिए वहां पर, सूक्ष्म साहस, फिर उसके जितने परिणाम होंगे वो भुगतने के लिए हम तैयार हो। जैसे हमें याद है जब बहुत पहले हम एक हॉस्पिटल में थे और वहां इतनी पुलिस केसेस होती रहती थी, तो एक बार एक पोस्टमार्टम के लिए पेशेंट आया और उसको यहाँ तलवार लगी थी, यहाँ घाव था और वो मर चुका था। तो दो पार्टियाँ थी, एक के हाथ में तलवार थी और एक के हाथ में कुल्हाड़ी। अब हमें ये रिपोर्ट लिखना था कि ये जो घाव है वो किसका है, तो हमने लिखा था कुल्हाड़ी का है, अर्थात जो कुल्हाड़ी वाला था वो जिंदा था और जेल में जाएगा हमारे रिपोर्ट के आधार से। दूसरा, अगर हमने लिख दिया ये तलवार है तो तलवार वाला तो मर गया था, केस खत्म, तो हमने लिखा था ये कुल्हाड़ी है। तो वो इतना पूरा गांव का प्रेशर कि नहीं वो चेंज करो, वो बेचारा जाएगा, पर जो है वो है, सत्य सत्य है, उसको हम बदल नहीं सकते, जो लिख दिया वो लिख दिया, वो नहीं बचा। तो सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत फेस करना पड़ेगा, परंतु हिलना नहीं, हटना नहीं वहां से। तो तीसरा गुण है साहस। चौथा गुण है बुद्धिमान चाहिए, वो इंटेलिजेंट। जजमेंट देने के लिए क्या चाहिए, आदमी बहुत बुद्धिमान चाहिए, कोई मूर्ख जजमेंट नहीं दे सकता। और हमें तो जीवन भर में अपने लिए जजमेंट देने पड़ते, चलो दूसरों का छोड़ो, खुद के लिए ही, मैंने ये गलती की। वर्तमान अतीत से यदि नहीं सीखेगा तो वही गलती फिर से वर्तमान दोहराएगा। मुझे अपने लिए जजमेंट देना है कि ये मेरे से गलती हुई है, अब मैं क्या सीखूं, और मुझे अब ये करना है, ये मैंने जज किया और निर्णय लिया और फिर आगे बढ़ा। तो यहां क्या बनना होता है, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान, उसके बाद है जैसे मेडिकल में होता है कंटिन्यूअल मेडिकल एजुकेशन। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हमेशा कॉन्फ्रेंसेस और लेक्चर सुनते रहना पड़ता है ताकि अपडेट रहे ज्ञान का, क्योंकि हर दिन बदल रहा है। उसी तरह कंटिन्यूअल लीगल एजुकेशन होता है, CLE, जैसे CME होता है इधर, उधर CLE होता है। अर्थात जो जज होगा उसको किताबें पढ़ते रहनी पड़ेगी, जो जज होगा उसे अपडेट्स पता रहना चाहिए, ये फला फला इसमें ये था, इसके दफा ये है, तो अभी क्या। अगर कोई जज कहे मुझे याद ही नहीं आ रहा ये कौन सा इसमें लगाऊं तो क्या कहेंगे, जरा देखता हूं खोल के क्या है, रुको तब तक केस केस खारिज कल तक, ये नहीं। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए और दूसरा अपडेटेड रहना चाहिए। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में भी हमें हर दिन की मुरली जो है हमारा कंटिन्यूअल एजुकेशन है, कंटिन्यूअस एजुकेशन चालू है, हर दिन नया नई 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 बातें आ रही है। जो बातें आज काम विकार के विषय में बाबा ने कही शायद इससे पहले कभी नहीं कही थी, इस शब्दों में कभी नहीं कही थी, तो नई बात जुड़ गई ना ज्ञान में। आज तो बहुत अच्छा काम किया, बाप का नाम मुंह काला कर दिया, इसके लिए तुमको ज्ञान दिया था। तो अपने ज्ञान को हमेशा ये समझना, मैंने जो भी समझा है जाना है कुछ भी नहीं है, अभी मुझे समझना है, अभी मुझे जानना है, एक एक विकार को सूक्ष्म रीति से समझना है, एक एक गुण को समझना है, शक्ति अपने अंदर धारण करना है। अपने आप की ही खोज है सारी, मेरे अपने संस्कार पता नहीं कैसे कैसे कहां कहां से प्रकट हो जाते हैं, क्या सोचता हूं और क्या होता है। जैसे मार्क ट्वेन इंग्लिश ऑथर ने लिखा हुआ है, वो एक बार चर्च में गया और पादरी भाषण दे रहा था दान पुण्य पर, उसके मन में आया मैंने जीवन में क्या किया, आज तो मैं दान दूंगा ही। 100 रुपए जेब में हाथ डालता है, 100 रुपए हाथ में रखता है कि जैसे वो कटोरा घूमता है ना, उधर कटोरी घूमती है उधर चर्च में, एक की आगे ऐसी ऐसी दान देने के लिए। वो कहता है जैसे आएगा तो मैं 100 रुपए दे दूंगा। प्रवचन पूरा पूरा होता है, चालू होता है, प्रवचन जैसे पूरा होता है तब तक वो सोचता है कि 100 तो थोड़े ज्यादा हो गए 100 तो इतने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब भाषण सुन रहे थे तो प्रभाव था, जैसे भाषण पूरा हुआ प्रभाव थोड़ा कम हुआ, वो सोचता है 50 रुपए ठीक है। और फिर कटोरा जब घूमते रहता है वो देखता है बाकी लोग तो कम ही दे रहे, जरूरी थोड़ी ना 50 ही देना चाहिए, वो कहता है मैं 30 रुपए दूंगा। और फिर फर्स्ट रो सेकंड रो, और जब उधर और आगे आती है, फिर सोचता है इससे क्या भगवान को पैसे थोड़ी चाहिए, भगवान को क्या फर्क पड़ता है 30 रुपए दो क्या 40 रुपए दो, वो तो दिल देखता है ना वो तो भावना देखता है, तो 30 रुपए दे के क्या फायदा, वो कहता है मैं 10 रुपए दूंगा। और फिर उसके बाद में जब उसकी रो में कटोरा आता है, देखता है कुछ कुछ लोगों ने तो कुछ भी नहीं डाला, वो सोचता है मैं भी क्या क्यों डालना है फालतू में, मैं भी नहीं डालूंगा, क्या करते हैं, डालने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फिर जैसे उसके पास आता है वो एक अजीब बात कर देता है, उसमें से ही इधर उधर देखता है और 10 रुपए उसमें से निकाल लेता है। और फिर उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हूं कौन, मैं वो हूं जो परोपकारी सोच रहा था ये कर दू दे दू इतना पूरा दे दू सारे पैसे दे दू यज्ञ में, और फिर यहां आने के बाद सोचता हूं तो यहां से कुछ मिल जाए तो ले जाओ अपने घर में जो बाप का बाबा नहीं कहा है, मुझे तुम्हारा स्थूल धन नहीं चाहिए, मैं तो दिल चाहता हूं। कितने तर्क, कितने जस्टिफिकेशन, ये हमारा मन है कैसे बदलता है, घड़ी घड़ी में बदलता है। रात में क्या सोचता है और सोचता है 2 बजे उठ के अमृत वेला करना ही है, ऐसा पावरफुल अमृत वेला करूंगा कि बस। और सुबह उठते इतनी ठंड, सोचता है अभी 2 बजे उठ के क्या करने वाला है, वहां जाके वैसे भी सोना ही है तो क्यों ना यहां अपना समय सफल करूं। अच्छा बाबा को कोई स्वप्न भी दिख रहा था, सतयुग दिखाई दे रहा था, अच्छा सा थोड़ा सा सो जाता। कितना बदलता है मन, इस मन को ही समझना है, इस मन को ही छोटा सा बच्चा समझकर उससे बात करनी है। उसको अगर जबरदस्ती करो, दमन करो उसका, तो वो बहुत खतरनाक रूप धारण करता है, भयंकर रूप धारण करता है। जबरदस्ती नहीं करनी है उसके साथ, कोई फटाफट चेंज कर दो क्रांति नहीं करनी है, रिवॉल्यूशन नहीं इवोल्यूशन, धीरे धीरे नई आदतें अर्थात धीरे 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 नए संकल्प अर्थात उसको समझाओ ये इसलिए करना है तुमको, तब वो मानेगा। धक से उसको करो तो वो सीधा नीचे गिरा देता है, ऐसे नहीं करना है। तो कहां थे हम, CLE कंटिन्यूअस लीगल एजुकेशन, इंटेलिजेंस पे थे हम, उसके आगे चले गए थे। इंटेलिजेंट होना चाहिए, बुद्धिमान, और संगम युग पर बुद्धिमान कौन है, जिसे पता है कौन सा समय चल रहा है, जो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता है, जो झगमोई झरमोई दूसरों की बातों में इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। उस दिन भी बताया था नेचर नेचुरल इसको बना दो, नो गॉसिपिंग, ये सबसे अच्छी बात है। तो उसके बाद है अगला गुण स्वास्थ्य, उसका अपना स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, उसे कोई भी साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक जज को ही यदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, उसको टेंशन आ जाता है छोटी छोटी बातों में, तो क्या जजमेंट दे पाएगा, खुद ही अजीबो गरीब केसेस देखकर खुद ही पसीना छूटने लगे तो क्या जजमेंट करेगा। उसका अपना शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों स्वास्थ्य अच्छे चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए जज में। हमें भी अगर अपने ही जीवन को जज करना है या दूसरों के जीवन को, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए वहां पर। उसके बाद में है रिस्पॉन्सिबल, जज एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, जैसे कहा ना एक गलत निर्णय किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। किसी निर्दोष को हमने भेज दिया और पूरा जीवन, जैसे यंग 40 साल 30 साल की सजा किसी को दे दी, यूथ युवा में वो चला गया, जब निकल गया है बूढ़ा हो गया है, उसकी पूरी जवानी चली गई। इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। उसके बाद अगला गुण है जज का कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर बेदाग हो, उसका चरित्र संपूर्ण बेदाग, स्पॉटलेस। इस यज्ञ में सबसे महान कौन है, जिनकी पवित्रता सबसे महान है, स्पॉटलेस लाइफ, जिसमें एक दाग भी नहीं, एक धब्बा भी नहीं, ऐसा शुद्ध पवित्र जिनका जीवन है, और यदि है दाग और धब्बे तो अब अवसर है उन सबको धो डालो। प्यूरिटी की शक्ति इतनी ज्यादा है कि कितने भी पाप हो सब धुल जाएंगे। ज्ञान सरिता बह रही है, अब ज्ञान गंगा बह रही है। यदि जीवन में ऐसी कुछ गलतियां हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी कुछ चीजें देख ली जो नहीं देखनी चाहिए थी, ऐसी चीज के कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी कुछ चीजें सोच ली या कल्पना कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी, अब समय है खुद को ठीक करने का, संवारने का। जैसे महाभारत के युद्ध में दिखाया, महाभारत के युद्ध तक सबको पता है, पर बाद में भी कुछ कहानियां दिखाई है। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पश्चाताप ही पश्चाताप है सब तरफ। भीम पश्चाताप कर रहा है कि मैंने दुशासन की छाती का लहू पिया, मैंने दुर्योधन की जग गंगा तोड़ी अनैतिक रूप से। अर्जुन पश्चाताप कर रहा है, मैंने कर्ण को तब मारा जब वो निहत्ता था। युधिष्ठिर पश्चाताप कर रहा है कि ये युद्ध हमने तब किया, वो द्रोणाचार्य को मैंने, मेरे झूठ की वजह से मेरे गुरु की मृत्यु हुई है। सब पश्चाताप कर रहे हैं, वो गांधारी पश्चाताप कर रही, वो धृतराष्ट्र पश्चाताप कर रहा है, सब के सब शोक मग्न है, हर जगह पर दुख है। वो कुंती पश्चाताप कर रही है कि मैंने एक सत्य को छिपाया, इसके वजह से युद्ध हुआ। हर एक समझता है मेरे वजह से युद्ध हुआ, हर एक की यह भावना है कि ये मेरे वजह से हुआ। इसीलिए पांडव, जो श्री कृष्ण उनको कहता है अब तुम अश्वमेध यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ पर ये अलग होगा, शांति का होगा, जिससे जितने नाते टूट गए हैं फिर से जुड़ जाए, इसलिए ऐसा यज्ञ करो। वो फिर से जाते हैं, वो कर्ण और कर्ण की जो पत्नी है उनसे मिलन होता है। वो जो दिखाया है दुश्शला, सब कौरव की बहन, जयद्रथ की पत्नी, वो क्रोध से भरी होती है, उसको वो फिर से मिला। मतलब जितने नाते टूटे हुए होते हैं वो सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं, सब सबको, जितने युद्ध में मारे गए, इधर भी गलतियां हुई उधर भी गलतियां हुई, इधर भी अनीति हुई उधर भी अनीति हुई, वो सबको युद्ध के बाद कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमसे ये चाहे धर्म की धार्मिक युद्ध था, धर्म की जीत हुई, पर परिणाम में क्या, जो अपने थे वो सारे खो गए, कड़वाहट सी भर गई सबके दिलों में। वो कहते हैं कि नहीं, अब हम इस कड़वाहट को हमको मिटाना है, जो हमसे गलतियां हुई हमको फिर से सब ठीक करना है। इसलिए इतना होपलेस भी नहीं बन जाना है कि कुछ भी नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा है तुम पतित तो हो ही, ऐसा कोई है कि जो पतित नहीं था, सभी पतित थे। मेरा तो धंधा ही है पतित को पावन बनाना। जब भी हमें कोई फोन करता है या कहता है कि एकदम सीक्रेट बात करनी है, मतलब एक ही होती है, दूसरी कुछ होती ही नहीं है, विकार की ही बात है जो सीक्रेट है, जो व्यक्ति किसी से नहीं कहना चाहता, इसी को ठीक करना है। तो जज अर्थात रिस्पॉन्सिबल, जज अर्थात कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर कैसा हो, शुद्ध हो। चलो हमें बाकी दोष है चलेगा, बुद्धि कम है चलेगा, बोलते नहीं आता चलेगा, परंतु किसी के प्रति विकार की भावना हमारे अंदर ना हो। भगवान एक ही देखेगा बस, जिसमें विकार की भावना है। यदि हम विकारी संकल्प के साथ बाबा के सामने खड़े हो जाए तो बाबा क्या कहेगा, बाबा को बदबू आएगी हमसे। हम चाहेंगे कि हम बाबा के सामने खड़े और बाबा कहे ये पता नहीं कौन आ गया, वो ऐसा करेगा नहीं, वो तो रहम दिल है। परंतु ये भूलना नहीं, इस यज्ञ का प्रथम नियम पवित्रता है, इस यज्ञ का फाउंडेशन पवित्रता है। बाकी सब टूट जाए छूट जाए चलेगा, इसको नहीं तोड़ना। प्राण जाए पर वचन न जाए। उसके बाद में अगला गुण है जज का एक्सपीरियंस, अनुभवी होता है। जज कैसा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। हमें भी अनुभवी बनना है, जो गलतियां हमने की है उससे सीखो और आगे बढ़ो, रोते नहीं बैठना, पश्चाताप नहीं करते बैठना, जो गलतियां हुई है उससे सीख लो और अनुभवी बन जाओ और बुद्धिमान भी बन जाओ। जैसे वो दिखाया ना, दो बिल्लियां लड़ रही है, ब्रेड का एक टुकड़ा मिला, दोनों झपटी, एक ने कहा ये मैंने देखा, दूसरे ने कहा, दूसरे बिल्ली ने कहा इसको पहले मैंने पकड़ा, ऊपर बंदर बैठा है सबको पता है, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी समस्या सॉल्व करता हूं, लाओ ब्रेड इधर, चलो इसको आधा आधा मैं टुकड़े करता हूं, आधा आधा दे दूंगा, जानबूझ के एक छोटा और एक बड़ा। वो कहता है अरे ये तो बड़ा हो गया, अभी मैं इसको थोड़ा खा लेता हूं ताकि ठीक हो जाए। फिर खाता है, फिर खाता है, फिर खाता है, फिर ये छोटा, फिर वो बड़ा, ये छोटा वो बड़ा, और जब पूरा हो जाता है वो कहता है अब तो क्या कर सकते, दोनों बिल्लियां देखती रहती है बस। डिसीजन हो गया, ये बड़ा चतुर जज था, इंटेलिजेंट जज, चतुर जज। तो जज कैसा होना चाहिए? अनुभवी, हमें भी अनुभवी बनना है। जीवन बहुत कड़वाहटों से भरता है, ऐसे ऐसे अनुभव देता है जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें जीवन में हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी ऐसा लगता है, पर वो हुई है और वही सत्य है। अब उसको स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, सबक लो उससे। और हर एक के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद में कितने हो गए, हो गए अभी एक लास्ट, 8 हो गए कि 9 हो गए। जज जो होगा उसमें एक गुण होगा, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, वो एकाग्र होकर उस केस को स्टडी कर सकता है। हमको याद है एक बार एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आया था, जिसकी इतनी सारी फाइल थी और ढेर सारे अस्पतालों में जाके आया था, अब उसका करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी चीजें थी उसमें। तो एक बार अमृत वेला जस्ट पूरा हो ही रहा था, 10 मिनट बाकी थे, हमने सोचा इसके बारे में सोचते हैं वो क्या है। हमारी दादी थी वो, एक कुंज दादी, एक महीना हॉस्पिटल में रह के आई और बहुत सारी सोनोग्राफी हुई, पर पेट दर्द जा ही नहीं रहा, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। इतना सारा लगभग 18 से 20 सोनोग्राफी हो चुकी थी और पेट तो था, दर्द था, सिटी स्कैन हो गया, सब हो गया, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। फिर हमको डॉक्टर अशोक मेहता ने बुलाया था, उन्होंने कहा तुम इसको देखो, हमने देखा, फिर उधर बात भी किया वो डॉक्टर से, पर क्या है समझ नहीं आ रहा था। और दादी चिल्ला रही थी, इतना दर्द था उनको, बहुत पेन था। अमृत वेला हमने सोचा कि ये जो कुछ है उनकी फाइलों में एकाग्र करके देखते हैं, और सारी चीजें एकाग्र करके देखी तो ऐसे लगा कि वो जो बीमारी है वो पेट में है ही नहीं, कहीं और है, वहां नहीं है शायद। और ऐसे लगा कि वो बैक में है, स्पाइन में, जहां की फ्रैक्चर हो चुका था, और वो पेन इधर आ रहा था। तो तुरंत उनका फिजिटी स्कैन किया तो उसमें दिखाई पड़ा कि वहां फ्रैक्चर है। उनको ऊपर लाए, इधर थे काफी समय, फिर ठीक हुए, चलना वगैरह चालू किया, 1-2 साल ठीक चला, बाद में शरीर छोड़ा, फिर 1-2 साल के बाद। तो वो हमको पहली बार पता चला कि जब मन एकाग्र हो जाता है तो वो चीजें पकड़ लेता है जो साधारण अवस्था में नहीं पकड़ पाता। एक होता है मुरली हमने पढ़ ली पूरी की पूरी, और ठीक था मुरली, अच्छी थी, हो गया इतना यहां तक है, पर एक है संपूर्ण एकाग्र अवस्था में मुरली को पढ़ना, जहां एक भी यहां वहां का संकल्प नहीं आ रहा है, वो अवस्था अलग ही है। उसमें ऐसी सूक्ष्म चीजें चेतना की पकड़ में आ जाती है कि जो अन्यथा पकड़ में नहीं आती है, अपने आप को समझ पाते हैं। तो एकाग्रता, तो जो जज होता है उसमें ऐसी कुछ बातें होती है। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो, स्पिरिचुअल जज, तुम कौन हो, डबल जज, और तुम्हें ऐसा जजमेंट देना है कि दूसरों के दुख छूट जाए। तो ये था चौथा भाग। अभी लास्ट बात, आज की मुरली से 1-2 बातें बताओ, फिर क्लास को पूरा करते हैं। आज की साकार मुरली में क्या क्या कहा? तुम विश्व कल्याणकारी, जिम्मेवारी, तो तो सात जिम्मेवारी बताई, उसका विस्तार करना है आपको, होमवर्क सबके लिए, सेवन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला, बाबा कैरेक्टर सुधारने आते। कैरेक्टर बड़ा अच्छा शब्द है, चरित्रवान बनाने आते हैं। ये पढ़ाई जो है वो चरित्रवान बनने की पढ़ाई है, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन है ये। केवल सूचनाएं दिमाग में भरने वाला ज्ञान नहीं है ये, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन है। इससे चरित्र निर्माण होते हैं, राष्ट्र निर्माण होते हैं। अगला, आत्माभिमानी बनना है। अगला, खुद को एक्टर समझना है। अगला, कार्य में लगाना है स्लोगन। अगला, हिम्मत से और धारणा वाली पॉइंट बताओ, वो शादी आत्मा, ये सबसे बड़ा अभ्यास है। सब आत्माएं हैं, ना तो स्त्री है ना तो पुरुष। आत्मा निर्लिंग है, आत्मा अलिंग है, जेंडरलेस। वो ना स्त्री है ना पुरुष है। इसमें एक सूक्ष्म अभ्यास है, इस शरीर में आने से पहले मैं आत्मा एक स्त्री के शरीर में थी, उससे पहले एक पुरुष के शरीर में थी, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष। ये उल्टा चक्र घुमाना है, उल्टा देखना है। मैं आत्मा इसमें थी, फिर इसमें थी, फिर इसमें थी, फिर इसमें थी। अब ना तो मुझ में वो पुरुष के संस्कार है ना वो स्त्रैण संस्कार है, मैं आत्मा हूं बस, विष्णु। ये भी एक अभ्यास है, अपने आप को अलग अलग शरीरों में देखना, 84 शरीर खड़े करना, इधर से इधर, 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 अब यहां हूं, मुझे इस शरीर से कोई लेना देना नहीं, केवल इस शरीर से मुझे पुरुषार्थ के लिए इस शरीर है बस, बाकी इसकी कोई आसक्ति कोई आकर्षण नहीं। और क्या कहा, भूत ही दुख देते, सबसे बड़ा भूत है काम। ये एक चिंतन का विषय और एक दे रहा है, दे रहे सबको, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, इसका क्या अर्थ है, कौन सा आदि कौन सा मध्य कौन सा अंत। अब ये मत कहना द्वापर, ये बड़ा सूक्ष्म वाक्य है, काम आदि मध्य अंत दुख देता है। ये आदि मध्य अंत कौन सा आदि मध्य अंत, हाँ इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। संकल्प जो आ रहा है तब से शुरुआत हो सकती है, या क्रिया, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ है इस एक छोटे से वाक्य के। आदि में भी दुख देता है, मध्य में भी दुख देता है, पर जो मध्य का दुख है वो सुख भासता है, भ्रम होता है वो सुख है, पर होता दुख, और बाद में भी दुख देता है। जैसे वो दिखाया, वो दो देवियों में से एक देवी जो थी वो देवी थी नहीं, वो तो भेष पहन की थी लड़ाने के लिए, झगड़ा करवाने के लिए, तो वो ना हो। तो ऐसी कुछ बातें थी आज की मुरली से। इसी तरह से रोज की मुरली का गहन अध्ययन करते रहना, चिंतन करते रहना। ओम शांति।